Hare Krishna. So we heartily welcome all of you in today's morning Srimad Bhagavatam class, and it is our great fortune to have with us His Grace Madan Mohan Prabhu. Prabhuji is here in our ISKCON Panjai Bagh temple after a long time, perhaps after 5 to 6 years. And Prabhuji is known all over ISKCON world for his scholarship, for his devotional qualities, and wherever, in whichever temple he goes, specifically a lot of devotees become attracted by Prabhuji's humility, Prabhuji's easy accessibility and genuine qualities, Vaishnava qualities. Prabhuji is also a member of GBC Shastrik Advisory Committee, and so we request all of you to take full benefit of Prabhuji's association. His Grace Madan Mohan Prabhu हमारे मंदिर में लगभग 5 या 6 वर्ष बाद दोबारा यहाँ पर पधारे हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि उनका हमें संग प्राप्त हो रहा है. प्रभुजी अपने पूरे विश्व भर में जाने चाहते हैं अपने स्कॉलरली लेक्चर्स के लिए, अपने वैष्णव गुणों के लिए. प्रभुजी जीबीसी शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, और अभी आप सब जानते हैं रशिया में एक केस हुआ था अभी भगवद गीता बैन करने का, यहाँ पर अलग अलग मंदिर के विरोध में कई सारे, तो प्रभुजी ने बहुत ही उसको टैकल करने में बहुत ही अहम भूमिका भी निभाते हैं. तो आप सबसे अनुरोध है प्रभुजी के संग का आप पूरा लाभ उठाएं. आपके पास जो मोबाइल फोन्स है उसको आप साइलेंट पे या स्विच ऑफ कर दीजिएगा. हरे कृष्ण. प्रवचन इंग्लिश पे होगा, साथ में हिंदी का अनुवाद होगा.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Reading from the 8th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 4, Gajendra returns to the spiritual world, texts 16 through 26.
Srimad Bhagavatam, 8th skand, 4th adhyay, Gajendra ka Vaikunth gaman, shlok sankhya 16-26.
So, श्लोक 16 इज ऑन द बोर्ड, हम लोग चलते हैं.
तो बोर्ड पर श्लोक संख्या 16 लिखा हुआ है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे.
And then also because there is no purport of Srila Prabhupada towards the end of this chapter, we will read the purport that Prabhupada gave for the previous shloka, number 15, which you read yesterday. Because the purportless stretch of verses continues till verse 4 in the next chapter, and the next chapter covers a different topic. So,
तो जो श्लोक संख्या 16 से लेकर 26 तक किसी भी श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो हम श्लोक संख्या 16 पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है पिछले श्लोक का, हम उसमें से वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अगला अध्याय शुरू हो जाता है और ये अगला अध्याय में अलग विषय है.
इदम् परिकृतो इदम् आहारे प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तमं. गजेन्द्रं कुरु सत्तमं श्रीमतां सर्वभूतानां. श्रीमतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः. सर्वभूतमयो विभुः.
शब्दार्थ एवं अनुवाद. इदम् ये आह कहा हरिः भगवान ने प्रीता प्रसन्न होकर गजेंद्रम गजेंद्र से गुरु सत्तम. हे गुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ शृण्वताम सुनते हुए सर्वभूतानां हरेक की उपस्थिति में सर्वभूतमय सर्वव्यापी भगवान ने विभु महान.
Translation: O best of the Kuru dynasty, the supreme personality of God, the super soul of everyone, being thus pleased addressed Gajendra in the presence of everyone there, he spoke the following blessings.
Hey Kurukshesh, इस प्रकार हरेक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया. उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे.
Text 17 through 24. भगवान वाच ये मंत्वं च सरश्चेदं गिरिकंदारकाननं व्यत्र कीचकवेनानं गोमानि सुरपादपां श्रृंगामि मानि भृश्यानि ब्राह्मणो मे शिवास्य च श्रोदं मे प्रियं धामा श्रीतदीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कस्तुभं मालं गादं कौमोदकी मम सुदर्शनां पंचजन्यां सुपर्णां पतगेश्वरं शेषं च मत्कमं सूक्ष्मं श्रीयं देवीं मदाश्रयं ब्राह्मणं ब्रह्मानं मारदं ऋषिं भगवं प्राह्रादमेव च मत्स्यकुर्मवराहाद्यैरवतारा कृतानि मे कर्मान्यनंत पुण्यानि सूर्यं सोमं पुताशनं प्रणवां सत्यमाव्यक्तं गोविप्रां धर्ममाव्ययं दक्षायानिर्दमा पत्नी सोमकश्यापयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दं कालिंदीं सीतवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षिं सत्ता पुण्यश्लोकंश्च मानवान् उथाया पररस्त्रान्ते प्रायाता सुसमाहिताः स्मरन्ति माम रूपाणि मुच्यन्ते ते हसोऽखिलात्.
श्लोक संख्या 17 से 24 का अनुवाद इस प्रकार है. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं. अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेंत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की तीन चोटियों, मेरे सुहावने धाम शीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कौमादकी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांच जन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुण, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों तथा मत्स्य, कूर्म तथा वराह, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में, भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, एरावत, हाथी, ध्रुव महाराज, सप्त ऋषि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं.
Text 25. एमां स्तुवां चनेनांगा प्रचिबुद्ध्या निशात्यये तेषं प्रणात्याये चाहं ददामि विप्लवां गतिम्.
श्लोक संख्या 25. हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं.
Text 26. शिशु को वाचा इच्छा दिशा ऋषिकेशा प्रद्म्या प्रद्माया जाल ज्योतमं हर्षायान विबुधानेकं आरुरोहा खगादिपम.
श्लोक संख्या 26. श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देखकर ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान ने अपना पांच जन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया, तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए।
So, we'll read Shloka 16 again in translation, and then we'll read the first paragraph of Srila Prabhupada's commentary for the 15th verse, because it's very relevant for what we just read. Text 16 again. Idam Mahari Praito Gajendram Kuru Sattama Srimvatam Sarvabhutanam Sarvabhutamayo Vibhu. O best of the Kuru dynasty, the Supreme Personality of God, the Super Soul of everyone, being thus pleased, addressed Gajendra in the presence of everyone there. He spoke of the following blessings.
तो अभी हम श्लोक संख्या 16 का अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद श्लोक संख्या 15 के तात्पर्य का पहला अंश पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 16। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हरेक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे।
Every verse in the Vedic literature, especially in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita's Vedic mantra, here the words Yatha Anulukirtayanti are used to recommend that this literature be presented as it is. Unscrupulous persons, however, deviate from the actual narration and interpret the text in their own way with grammatical jugglery. Such deviations are to be avoided. This is a Vedic injunction supported by Shukadeva Goswami, one of the Mahajans or authorities. He says, Adhano Kirtayanti, one should recite the mantra as it is without deviation, for then one will be eligible to rise to the platform of all good fortune. Shukadeva Goswami especially recommends that those who are Brahmanas, Shuchayaha, recite all these mantras after rising from bed in the morning.
Tatparya, Shlok Sankhya 15 ka. Vedic Sahitya ka. एक और विशेषता, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकीर्तयन्ति शब्द से ये संस्तुति की गई है कि साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणिक वाकजाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह के हेर फेर से बचना चाहिए। ये वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथा अनुकीर्तयन्ति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग प्रातःकाल शैया से उठते ही इन सभी मंत्रों का पाठ करें।
ओम ज्ञान चिमरम दस्य अज्ञानंजन शलाकय शक्षलम मिलिता विन तस्म श्री गुरवे नम श्री चैतन्य मनो मुक्षतम स्थपतम ये नूतले स्वयं रूप कदम अहम ददच स्वपदंचित वंदेहम श्री गुरो श्री तपद कमलम श्री गुरु वैष्णवंश्च श्री रूपम सग्राजतम सुखगण रघुनतम यतम तम सजीव सद्वायताम सहदुताम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सफगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु जिन बांधव जगत पते गोपीश गोपिक कांत राधे कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंश कौपतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वचन पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निचनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तरिणे मुखम करो चलो यत्कृपत महामुदेश गुरु दिनतरणाम। So this is a series of verses spoken by the Lord upon arrival to the scene of this narration.
यहाँ कई श्लोकों की संख्या श्री भगवान द्वारा उच्चारित की गई है जब वो उस सीन पर उपस्थित होते हैं।
The first time of Gajendra, which you are about to finish, speaks about the urgent need to surrender to the Supreme Personality of Godhead in all circumstances.
गजेंद्र की लीला का भी हम यहाँ पर समापन करने वाले हैं और ये हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से बहुत ही भगवान की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए प्रत्येक परिस्थिति के अंदर बहुत ही शीघ्रता से.
So Gajendra was in a hopeless situation and he was destined to die miserably in the mouth of the crocodile.
जो गजेंद्र था उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था बहुत ही भयावह मृत्यु वो घड़ियाल के मुंह में उसका जो पैर फंस गया था उसके कारण.
But because he surrendered to the Supreme Lord, his misfortune actually turned into great fortune.
परंतु क्योंकि उसने परम पुरुषोत्तम भगवान की शरणागत ग्रहण की तो उसका जो दुर्भाग्य था वह सौभाग्य में बदल गया.
The kind of fortune he got he wouldn't have received if he was saved by somebody else.
जो सौभाग्य गजेंद्र को प्राप्त हुआ उसे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता अगर वो किसी और के द्वारा बचाया गया होता.
As Srila Prabhupada explains in one of the his classes on the 7th canto of Srimad Bhagavatam, the story of Prahlada Maharaj.
जैसे श्रीला प्रभुपाद अपनी कक्षा सातवें स्कंद पर बताते हैं.
He says that because Gajendra surrendered to the Supreme Personality of Godhead, he became a pure devotee.
क्योंकि गजेंद्र ने परम पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण शरणागत होकर उनके शरण ग्रहण की इसलिए वे शुद्ध भक्त बने.
Even though the reason for his surrender was not exactly pure, he was asking for help to have his life saved.
हालांकि जो उसका शरणागति का उद्देश्य था वो शुद्ध नहीं था. उसका मुख्य उद्देश्य था अपना जीवन की रक्षा करना.
But in the process of surrender, he became a pure devotee.
परंतु इस शरणागति की विधि में वह एक शुद्ध भक्त बन गया.
A pure devotee, and this is manifested in his prayers. A pure devotee is someone who doesn't really care if he is saved physically. The only thing that is of concern for a pure devotee is that he can always remember the Supreme Personality of Godhead and worship him to his best ability.
शुद्ध भक्त का असली उद्देश्य होता है कि भगवान का निरंतर उसे स्मरण रहे और वह भगवान की अर्चना पूजा करे. उसका मुख्य उद्देश्य अपना भौतिक देह का बचाना नहीं होता.
And this desire of a pure devotee to Krishna, worship Krishna to his best ability in all circumstances turns all circumstances into the best facility for worship.
तो जो शुद्ध भक्त है वह हर परिस्थिति में जब भगवान की पूजा करना चाहता है तो उसे हर परिस्थिति में कोई ना कोई सुविधा मिलती है.
And the Srila Prabhupada continues to explain that this Gajendra, even though he was an elephant, and he was obviously not a very chaste elephant because he was taken bath in the river, surrounded by his female consorts.
तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं गजेंद्र एक हाथी था और ऐसा नहीं है कि बहुत ही चेस्ट हाथी हो. जैसा हमने देखा कि वो स्नान कर रहा था अपनी पत्नियों से घिरा हुआ था.
There is even a verse in the literatures of the Goswamis which says it lists different personalities, including Gajendra. The verse lists different personalities, including Gajendra.
जो शठ गोस्वामी हैं, वो अपने टीकाओं में बताते हैं कि गजेंद्र के अंदर अलग-अलग व्यक्तित्व कैसे प्रस्तुत हैं.
And it says, what was the maturity of Dhruva? Maturity of Dhruva?
Maturity.
Maturity. Maturity.
एक है जो ध्रुव महाराज की जो मैच्योरिटी है.
What was the piety of the hunter called Vyada? Piety of hunter.
Vrigari का जो पुण्य है.
It was Vyada, I think. The name mentioned there was Vyada, the hunter. Vyada. Vyada means the piercer, one who pierces.
Vyada. कि जो पुण्यता है.
What was the beauty of Kubja? The beauty of Kubja.
Kubja ki sundarta.
Yeah. What was the valor or chivalry of
Bhagwan Shiv
of Ugrasen?
Bhagwan Shiv ka kya shaurya tha? Ugrasen ka kya shaurya tha?
And then that's okay, sorry. And also, what was the intelligence of Gajendra?
Aur Gajendra ki kya buddhimanta thi?
So means very little. Very little intelligence.
बहुत ही कम बुद्धि थी.
Yeah, was very little maturity of Dhruva, very little beauty of Kubja, very little chivalry of Ugrasena, very little इंटेलिजेंस उनके चंद्र
जो ध्रुव है उनकी जो मेच्योरिटी थी बहुत कम थी, जो कुब्जा की सौंदर्यता थी बहुत कम था, जो व्याध का शौर्य था बहुत कम था, और गजेंद्र की क्या बुद्धिमता थी।
When the verse concludes, but all of them surrendered to the Lord, and their shortcomings were counteracted by the process of surrender.
परंतु जो श्लोक है बताता है किस प्रकार सभी ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और वे विधि में शुद्ध भक्त बने।
So the Lord Himself says in the Bhagavad Gita, Yoga Kshema Bhavanaham, which means that He gives the devotee what he or she lacks in his or her devotional service to the Lord.
भगवान भगवद गीता में कहते हैं योग क्षेम महामेहम, जो भी भक्त के पास जिस चीज की कमी होती है वह उसको प्रदान करते हैं।
So Srila Prabhupada explained that because Gajendra, even though he was not very intelligent, he became a pure devotee.
Srila Prabhupada ये व्याख्या करते हैं कि हालांकि गजेंद्र बहुत बुद्धिमान जीव नहीं था परंतु वह शुद्ध भक्त बना।
And also the crocodile
और घड़ियाल।
The crocodile, because the crocodile took shelter of the foot of a pure devotee, he also became purified.
क्योंकि घड़ियाल ने एक शुद्ध भक्त के चरण की शरण ग्रहण की थी, तो इसलिए वो भी भक्त बना।
He was holding. We usually, if we have were fortunate, we hold onto the lotus feet of pure devotees with our hands.
अगर हमारा सौभाग्य है तो हम जो शुद्ध भक्त है उनके चरण अपने हाथ से पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं।
But the crocodile was more fortunate. He was holding the lotus foot of a pure devotee with his mouth.
जो घड़ियाल था अधिक मात्रा में सौभाग्यशाली था, वह अपने मुंह से एक शुद्ध भक्त के चरण को उसने पकड़ा हुआ था।
Shilaprabhupada explained that he also became liberated.
Srila Prabhupada जी बताते हैं कि वो घड़ियाल भी मुक्त हो गया।
So that incarnation. Don't try it at home.
इसको आप घर पे इसको करने का प्रयास मत कीजिएगा।
So they say sometimes disclaimer, don't try it at home.
कभी कभी डिस्क्लेमर होता है नीचे, डोंट ट्राई दिस एट होम।
बट श्रीपाद कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट एनी कांटेक्ट विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन इवन इन डिस्ट्रेस ब्रिंग्स अस मच मोर गुड फॉर्चून दैट वी कैन ऑब्टेन बाय एनी अदर ऑर्डिनरी मींस।
श्रीला प्रभुपाद ये समझाते हैं कि किसी भी तरह से शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी साधन से उपलब्ध हो पाना नामुमकिन है।
And in the verse we're chanted together today, it says that the Supreme Personality of Godhead, upon arrival to the site, he blessed this Gajendra with the following words.
जैसा कि हमने आज के श्लोक में पढ़ा कि जब परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के समक्ष गजेंद्र के समक्ष उपस्थित हुए।
Srila Prabhupada explains it because the Srimad Bhagavatam is spoken by the Supreme Lord or by his pure devotees. Every single word and every single shloka in Srimad Bhagavatam is a Vedic mantra.
Srila Prabhupada बताते हैं क्योंकि Srimad Bhagavatam में जो श्लोक है या तो भगवान के द्वारा उच्चारित है या उनके शुद्ध भक्तों द्वारा, इसलिए हर प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है।
And Srila Prabhupada introduced the chanting of the Sanskrit shlokas of the Srimad Bhagavatam in the morning. He explained to devotees that these are to be chanted regardless of whether we understand the meaning of these shlokas or not.
जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने ये प्रणाली शुरू की कि भागवतम क्लास के शुरुआत में हम इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और इन श्लोकों का उच्चारण चाहे हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर भी इसका करते हैं।
He personally led the chanting and then he told the devotees, but because this is Shabda Brahma, it acts upon us whether we understand the meaning of these shlokas or even if whether we chant them properly or not.
वे व्यक्तिगत उदाहरण से ये प्रस्तुत करते थे। जब श्रीला प्रभुपाद श्लोकों का उच्चारण करते थे तो वे बताते हैं कि शब्द ब्रह्मा है, इसलिए ये हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं चाहे हम ठीक रूप से उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं।
Actually, it's not even sufficient to chant the shlokas in a perfect Sanskrit pronunciation, a perfect Sanskrit meter. It's not sufficient.
इन श्लोकों का उच्चारण बिल्कुल सटीक संस्कृत के साथ और सटीक मीटर में छंद के साथ उच्चारण करना यह पर्याप्त नहीं है।
Just like the holy name of the Lord, the holy name.
जैसे कि भगवान का पवित्र नाम।
Sometimes people chant the holy name perfectly in terms of pronunciation.
कभी कभार लोग भगवान के पवित्र नाम उच्चारण में बिल्कुल सही सही बोलते हैं।
Externally. like the Mayavadis or people who don't believe in Krishna.
जैसे मायावादी या ऐसे लोग जो कृष्ण में विश्वास नहीं रखते हैं।
But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that this kind of chanting is not nama japa or hari nama kirtan.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur बताते हैं कि ये नाम जप नहीं है या कीर्तन नहीं है।
He says that this is nama akshara, not nama kirtan.
ये नाम आश्रय है।
अक्षर, अक्षर।
नाम अक्षर है, ये कीर्तन नहीं है।
अक्षर means alphabet.
अक्षर का अर्थ है अक्षर, alphabet. Right.
So what these people chant, especially offensive people in Mayavadis, is just the names, the words, the letters. Ka, re, sha, na. This is what they chant. They don't chant Krishna.
तो जो मायावादी हैं, वो सिर्फ अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं. Ka, ra, sha, na. वो नाम का उच्चारण नहीं करते.
Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha Nitya, Shuddho Purna Mukto Binatvan Namanam. It's explained in this verse that this holy name of the Lord is Nitya Mukta. It's always liberated.
Je Bhagwan ka pavitra naam hai, wo nitya mukta hai.
Nitya Mukta means that Jiva Goswami explains that it means that the holy name cannot be captured by people who do not have devotion to chant him.
Nitya Mukta ka arth Jiva Goswami par is prakar batate hain ki ye naam kisi ke dwara पकड़ा नहीं जा सकता जिनका भगवान में विश्वास या श्रद्धा नहीं है.
Even if they pronounce the syllables separately, properly, they do not pronounce the name refuses to be captured or to be chanted by these people.
हालांकि वो अलग अलग अक्षरों का उच्चारण बिल्कुल सही रूप से कर रहे हैं परंतु नाम उनके पकड़ में नहीं आता, नाम उनको अपना आश्रय प्रदान नहीं करता.
It remains, the whole name, him, he remains outside of their scope of perception and they cannot chant him.
तो ये सिर्फ उनका भ्रम है कि वो अगर इस प्रकार का नाम उच्चारण कर रहे हैं, वास्तव में जो नाम है उनको अब प्रदान नहीं होता.
But if a devotee chants the holy name with, as it is explained in the next verse, Atha Krishna Namadina Bhavegraham Indriya, Sivam Mukhehi Jihvada, when a devotee, he or she chants the holy name with seva unmukha, means trying to please the Supreme Personality of Godhead, then the Supreme Lord manifests himself, spurati, all of a sudden, in these syllables.
Parantu agar koi bhakt Bhagwan ke naam ka uchcharan karne ka prayas kar raha hai, is uddeshya se, ki wa Bhagwan ki seva karna chahata hai, unko prasan karna chahata hai, to Bhagwan aise bhakt ki jiva par apne aap ko prastut karte hai.
So when Srila Prabhupada uses comments on, in his part of the commentary we read on the word yatha anukirtayanti, then they should recite the mantra as it is, without deviation, and then it becomes effective.
Srila Prabhupada tatparya mein likhte hain yatha anukirtayanti ki manushya ko bina koi fer badal kiye hue mantra ka yatharup paath karna chahiye.
And very important, a part of this word yatha anukirtayanti is word anu.
इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यथा अनुकीर्तयन्ति का अनु.
अनु means following, following.
अनु का अर्थ है आगमन करना.
Following. Following what?
किस चीज का अनुशीलन करना?
Not what, but whom. Following the devotees, the pure devotees who have chanted these mantras, who have explained these pastimes of the Lord, following in their footsteps.
उन शुद्ध भक्तों का चरण कमल का अनुगमन करना जिन्होंने इन मंत्रों का बिल्कुल शुद्ध रूप से उच्चारण किया है.
Which means fallen in the mood of their devotion.
इसका अर्थ है शुद्ध भक्तों के जो पथ है उस पर चलना.
Srila Prabhupada explains that in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, one of his commentaries.
Srila Prabhupada 10th canto के श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं.
He explains that a devotee, an actual devotee, is someone who, while chanting Krishna's name or chanting Krishna's glories, doesn't want to achieve any result except one, glorifying Krishna.
कि शुद्ध भक्त वो है कि जो भगवान के जो नाम है, उनकी लीला है, उनका गुणगान करते हुए किसी भी इच्छा की कामना नहीं करता. उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि इनका गुणगान करते हुए कि वह और अधिक गुणगान करें.
This should be the only aspiration, to try and please Krishna by glorifying him.
यही एकमात्र आकांक्षा होनी चाहिए किसी भक्त की कि भगवान के यश का अधिक से अधिक गुणगान करें.
And then whatever little such a devotee knows about Krishna will become very fulfilling.
Whatever?
Little.
Little.
That devotee knows about Krishna becomes very fulfilling.
और अगर वो इस उद्देश्य के साथ गुणगान करता है तो भक्त को जब कितना कम ही ज्ञान हो कृष्ण का परंतु वह उस वो ज्ञान उसको पूर्ण मात्रा में संतुष्टता प्रदान करता है.
Krishna himself says that in the 11th canto Bhagavatam.
भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में खुद इस बात की संस्तुति करते हैं.
He says, my devotees might not know who I am.
कि मेरे भक्तों को शायद ये ना पता हो कि मैं कौन हूँ.
How I am.
मैं किस प्रकार से हूँ.
How I exist.
मेरा अस्तित्व किस प्रकार से.
You might not know everything about me.
उन्हें मेरे बारे में सब चीजों का ज्ञान ना हो.
They might not even know that I am God.
उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि मैं भगवान हूँ.
No, that's a significant portion of knowing Krishna, knowing that He is God.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान का कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है.
But Krishna says sometimes I don't even know that I am God.
परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शायद मेरे भक्तों को ये भी ना पता हो कि मैं भगवान हूँ.
But because they love me.
परंतु क्योंकि वे मुझे प्रेम करते हैं.
And the actual sign of love is what?
और प्रेम का वास्तविक लक्षण क्या है?
Actual sign of love is that when you try to glorify the person you love.
उसका लक्षण ये है कि वे आप उनका गुणगान करना चाहते हैं प्रेम वर्ष.
And the actual sign of love is you want others to love that person as well.
वास्तविक लक्षण है कि आप चाहते हैं अन्य लोग भी उनसे प्रेम करें.
See, this is the difference between material love and spiritual love.
ये अंतर है भौतिक प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में.
In material love, the kind of love that people have, if you love someone, then you don't want other people to love that person too much.
भौतिक जगत में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तथाकथित प्रेम करते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि अन्य लोग भी उतनी ही मात्रा में उससे प्रेम करें.
Well, because you're afraid of losing that person.
क्योंकि आपको हमेशा ये भय रहेगा कि आप कि कहीं आप उस व्यक्ति को खो ना दें.
That's why not to encourage this kind of sensitiveness of other people. Women in Vedic culture were protected from the eyes of other people, onlookers.
इस प्रकार के भाव को इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता.
And when the husband was away, the woman was supposed to either not appear in public at all, or if she had to appear in public at all, she had to make herself to look very unsightly.
जैसे कि वैदिक सभ्यता में अगर पति बाहर हो तो जो पत्नी है उसको ये अनुमति नहीं होती थी कि वह जनता के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करें, और अगर करे भी तो इस प्रकार से कि ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश है.
So not to encourage this kind of sentiments.
तो इस प्रकार के भावों को बहुत प्रोत्साहित नहीं किया जाता था.
Of course, it's different for Vaishnavis. It's different for Vaishnavis.
Vaishnavis के लिए प्रथा अलग है.
Once Srila Prabhupada wrote a letter to one of his female disciples.
एक बार Srila Prabhupada ने अपने एक शिष्या को पत्र लिखा.
And she was very young.
वो बहुत ही एक युवती थी.
I think her name was Himavati Mataji.
शायद उनका नाम हिमावती माताजी.
So she was what, about 25 or 30 years old.
शायद उनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में होगी.
And somehow or other she decided to shave her head and wear white.
तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह अपना हेड शेव करना चाहती हैं और सफेद वस्त्र धारण करना चाहती हैं.
So Srila Prabhupada wrote a letter.
Srila Prabhupada ने उन्हें पत्र लिखा.
He said, I don't know where you got this idea about shaving your head and wearing white.
तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने लिखा, मुझे नहीं पता कि आपके मन में कहां से विचार आ गया कि अपना हेड शेव करना है और सफेद वस्त्र धारण करने हैं.
He said, don't try to make yourself ugly in front of Krishna.
अपने आप को बदसूरत बनाने का प्रयास मत करो भगवान कृष्ण के समक्ष.
And Krishna says, Shilpada said, Krishna doesn't like ugly gopis.
और फिर प्रभुपाद जी ने पत्र में लिखा, कृष्ण को बदसूरत गोपियां पसंद नहीं है.
He put everything in the right perspective immediately for that lady.
तो जो एक महिला के लिए चीजों को बिल्कुल एक सही दृष्टांत के में रख रख.
So you dress nicely, but for Krishna.
कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेस करें, परंतु भगवान कृष्ण के लिए.
And also, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he taught us how to properly look at others' beauty.
और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने हमें शिक्षा दी है कि हमें अन्य के सौंदर्य को किस प्रकार से देखना चाहिए.
जस्ट लाइक प्रभुपादा रोट टू द लेडी, यू हैव टू बी गोपी एंड यू हैव टू ड्रेस नाइसली फॉर कृष्णा. कृष्णा डज लाइक अग्ली गोपीज.
जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि आप गोपियों की तरह बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को ड्रेस करना है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए.
So Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that everyone, every man should look at other women as Krishna's beloved.
उसी प्रकार से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शिक्षा दी है कि हर पुरुष को देखना चाहिए कि जो महिला है वो भगवान कृष्ण की है.
He has to look at his parents, father and mother, as at Krishna's parents.
जो उनके माता पिता हैं, उनको इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के माता पिता हों.
That's what he wrote.
ये उन्होंने लिखा.
And he has to look at his children as Krishna's playmates, in his pastimes.
और जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसको भगवान कृष्ण के जो ग्वाल सखा हैं.
And one who has such
a इस प्रकार से देखना चाहिए.
One who cultivates this attitude, this kind of outlook on even his relatives and other people, he is already living in the spiritual world. He says.
जो इस प्रकार का नजरिया cultivate करते हैं अपने अंदर, वही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं.
So talking about ladies, your love. So, but when we love Krishna, then we want to speak about him. And want others to love him as well, because Krishna is enough for everybody.
क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो हम यही हमारी यही इच्छा होती है कि अन्य लोग भी भगवान कृष्ण से प्रेम करें, क्योंकि भगवान कृष्ण पर्याप्त हैं.
He is sufficient for everybody.
वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त हैं.
Once Srila Prabhupada was giving class, and one lady asked him.
एक बार श्रील प्रभुपद कक्षा दे रहे थे और एक महिला ने उनसे प्रश्न किया.
A question. And she asked, how can I say Krishna is mine? Krishna is everybody, so how can I call him mine?
तो उनका प्रश्न था कि मैं कृष्ण को अपना किस प्रकार संबोधित कर सकती हूँ, क्योंकि कृष्ण तो सभी के हैं.
And Prabhupada explained that that's Krishna. Krishna is so wonderful that he can belong to each and every one of his devotees completely.
तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण इतने अद्भुत हैं कि वो अपने सभी भक्तों को पूर्ण मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उनके पास हैं, प्राप्त हैं.
If you or I try to be friends of everyone, then we won't last long. Our friendship will be very thin.
अगर आप इस संसार में सभी का मित्र बनने का प्रयास करें, तो आपकी जो मित्रता है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी.
And the scientists say that a normal human being can have only about 400 close acquaintances who he can retain in his memory, about 400.
जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने गणना की है कि एक व्यक्ति का अधिक से अधिक 400 लोगों के साथ ही मित्रता हो सकती है, जिसको वो अपनी बुद्धि में स्मरण कर सके.
When you try to push the 405th first, then the first one pops out. I can retain them in the memory.
तो जब आप 401 नंबर के मित्र को अपने अंदर उनके साथ संबंध बनाएंगे, तो पहला नंबर का बात कर सक जाएगा.
Sometimes I get into such embarrassing situations that I don't remember devotees' faces because I travel so much with Niranjana Swami, and sometimes I meet a devotee who I know I'm supposed to know, but I forget where I met him and what's his name, and I try to behave in such a way that as if I remember, but then I run into right.
तो प्रभुजी बता रहे हैं, कभी कभार मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि प्रभुजी निरंजन महाराज के साथ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं इन भक्त को मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है, और मुझे पता अंदर से पता है मुझे जानना चाहिए इन भक्त को, परंतु मैं उनको पहचान नहीं पाता और बाह्य रूप से इस प्रकार से प्रदर्शन करता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ.
जस्ट लाइक Shall I tell the story?
तो क्या मैं आपको एक कहानी बताऊं? नहीं.
Once I can tell the story. Once I was in Gopal Krishna Maharaj's Vyasa Puja.
कि एक बार प्रभुजी गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा में थे.
And I was sitting next to a very nice devotee with his wife and kids.
और मैं एक भक्त के साथ में बैठा हुआ था, और उनके साथ उनकी पत्नी थी और बच्चे थे.
One daughter.
एक पुत्री थी.
And I started talking with him.
और मैंने उनसे बात करना शुरू प्रारंभ किया.
For some reason he was very friendly to me.
कुछ कारणों से वो मेरे प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार रख रहा था.
So I started talking with him also in a very friendly way.
तो इसलिए वो मेरे से बहुत ही मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगा।
So I asked him, where are you from?
तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं?
And he told me, I'm from Chandigarh.
तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ से हूँ।
I said, oh, Chandigarh. And I remembered, because in Moscow we had a very nice devotee, now ISKCON Youth Forum. He was studying there as a medical doctor. He became a doctor. And he went to Chandigarh as a medical doctor.
तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं रशिया में मेरा एक बहुत भक्त थे इस यूथ फोरम के जो अभी चंडीगढ़ में डॉक्टर है।
And I said, oh, if from Chandigarh, I have a very nice friend. He studied in Moscow. And he's in Chandigarh now, and his name is Rama Rajakab. Do you know him?
तो रहे था आप चंडीगढ़ से मेरे मॉस्को से मैं एक भक्त को जानता हूँ वो अभी चंडीगढ़ में डॉक्टर है मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं तो रहे था उनका नाम है राम राजकू आप क्या उनको जानते हैं
सर यस आई एम राम राज
तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम है राम राज प्रभु जी सामने बैठे हैं राम राज
I'm so embarrassed. And I asked him, please don't tell anyone.
Because
I'm telling everyone.
परंतु मैं सबको बता रहा
हूँ. So it just shows the limitation of our memory.
तो ये दिखाता है कि जो हमारी स्मरण शक्ति है उसकी कितनी उसकी सीमा है.
In trying to be a friend of everyone, that's what happens.
अगर आप हर एक का मित्र होने का प्रयास करेंगे तो ये होता है।
But Krishna knows everyone. He remembers every single person.
परंतु भगवान कृष्ण सभी को जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को।
And he gives himself over completely to the person.
और अपने आप को पूर्ण मात्रा में प्रत्येक जीव को दे सकते हैं।
So that on the level of prem, pure love of Krishna, we have that quality, mamatva, the quality of extreme possessiveness of Krishna.
इसलिए प्रेम के स्तर पर ये गुण है ममत्व की एक्सट्रीम पोजेसिवनेस बहुत ही अधिक मात्रा में लगाव होना
सो एवरी सच डिवोटी कैन से कृष्णा इज माय कृष्णा सेज यस आई एम हिज
तो इसलिए उस स्तर पर एक भक्त कह सकता है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ
सो दिस इज द डिवोटीज हु चैंट दिस मंत्रस इन 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 श्रीमद् भागवतम एंड ऑल वी हैव टू डू इज ट्राई टू रिपीट दिस मंत्रस नॉट Exactly the way they recited necessarily, but with the same kind of attitude towards Krishna.
तो जो ये मंत्र है श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्तों के द्वारा उच्चारित किए गए हैं और हमें बस इतना प्रयास करना है इनको हम दोबारा इनका उच्चारण करें हो सकता है हमारा प्रोनंसिएशन उच्चारण करने का तरीका पूर्ण रूप से ठीक ना हो परंतु अगर हमारा जो दृष्टांत है हमारा दृष्टिकोण उसी भाव से मंत्रों का उच्चारण करते हैं
And it teaches also what it means, how we should behave so that whatever we chant, whatever we do for Krishna actually is accepted by Him as service.
और ये मंत्र हमें शिक्षा भी देते हैं कि हमें अन्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए.
It comes down to very practical things.
ये बहुत ही व्यवहारिक है.
Shri Prabhupada in this commentary also says that we have to recite this mantra early in the morning.
जैसे श्रीला प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि इन मंत्रों का हमें उच्चारण सुबह सुबह करना चाहिए
this commentary, but I think in the second part he was talking about waking up. And also here, the verses themselves speak about the need to rise up early in the morning and chant these mantras in the morning.
और श्लोक अपने आप में बताते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है इन मंत्रों को उच्चारण करने की क्या आवश्यकता है
Once Shri Prabhupada came to a temple in the west.
श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में एक मंदिर में गए
एंड ही स्टार्टेड गिविंग भागवतम क्लासेस फुल ऑफ कृष्णस पास्टाइम्स
और उन्होंने श्रीमद् भागवतम कक्षाएं में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया
बट देन ही लर्न दैट डिवोटीज डोंट गेट अप फ्रॉम मंगल आरती टू द टेंपल
परंतु तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो भक्त हैं वो मंगल आरती के लिए उठ नहीं रहे
एंड ही इमीडिएटली चेंज द टॉपिक ही स्टार्टेड टेलिंग डिवोटीज इन भागवतम क्लासेस दैट दे आर नॉट द बॉडीज दे आर नॉट देयर बॉडीज बॉडी
तो उन्होंने तुरंत श्रीमद् भागवतम का जो विषय है उसको बदल दिया और वह भागवतम क्लास में बताने लगे कि आप इस शरीर नहीं हो
right, and he started preaching that there are three modes of material nature and the devotee to be able to continue his devotional service has to overcome this mode of nature and come to the platform of goodness
और उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि जो किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण हैं और एक भक्त अगर अपनी भक्ति में आगे प्रगति करना चाहता है तो उन्हें इस तीन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करनी होगी।
And he wrote many instructions in his letters. He spoke these instructions in his classes about the need to rise early in the morning and chant Krishna's names in Brahma Muhurta.
उन्होंने बहुत से निर्देश दिए कि एक भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में जागने की क्या आवश्यकता है।
He in one of his letters he wrote that knowing philosophy is helpful. Knowing philosophy is helpful.
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि दर्शन को जानना ये सहायता करता है।
Reading books is very important.
पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
But if you don't put to practice whatever you read, whatever you hear,
परंतु अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं लाते,
it has very little value, no value at all.
तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है।
If you don't get up early in the morning and chant Krishna's names in the morning, then you don't live a spiritual life.
अगर आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान के नामों का जप नहीं कर रहे, तो उस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
And he repeatedly, I just did the research, he compiled about 30 pages of Prabhupada's letters from quotes from letters about the need of rising early in the morning. Prabhupada keeps on emphasizing the same point over and over again. Unless you rise early in the morning, unless you chant Krishna's names in the morning, unless you come to the temple, there is no question of spiritual life at all. No question.
प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिसर्च किया शिला प्रभुपाद के कोट से भरा हुआ लगभग 30 पेजेस का इतने सारे कोट्स प्रभुपाद जी के बार बार जहाँ प्रभुपाद इस बात पर महत्व दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सुबह जल्दी उठना सुबह नाम का उच्चारण करना मंदिर आना अगर आप ये नहीं कर रहे तो कोई आध्यात्मिक जीवन का होने का प्रश्न ही नहीं उठता ये जीव गोस्वामी जी के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।
And Prabhupada continues, he repeats his explanation that the holy name of Krishna does not depend on external considerations.
और श्रीला प्रभुपाद भी इस बात को दोहराते हैं कि जो भगवान का दिव्य नाम है ये बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं है।
The holy name of Krishna doesn't even depend on initiation, on diksha.
भगवान का दिव्य नाम वास्तव में दीक्षा पर भी निर्भर नहीं है।
Anyone can chant Krishna's names.
कोई भी भगवान कृष्ण के नामों का जप कर सकता
है। But Jiva Goswami explains, the holy name does not depend on initiation or external circumstances, but we depend.
जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भगवान का दिव्य नाम है वो दीक्षा पर आधारित नहीं है उस पर निर्भर नहीं करता परंतु हम उस पर निर्भर करते हैं।
As long as we have the material body and the material mind and material senses, we should act in such a way that, number one, they create as little obstacle.
जब तक हमारे पास सिंपैथिक शरीर इंद्रियां और मन है तो हम इस प्रकार से उनसे कार्य करें कि सबसे पहला वो कम से कम मुश्किलें पैदा करें हमारे लिए
नंबर टू दे शुड बी एंगेज एज फुली एज पॉसिबल इन द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड
और दूसरा वे भगवान कृष्ण की सेवा में अधिक से अधिक मात्रा में संलग्न हो
दैट्स व्हाई वी हैव द डीटीज हियर
इसलिए यहाँ पर विग्रह प्रथम है
एक्चुअली दैट्स ग्राउंड द डीटीज हैव अस हियर
एक्चुअली उल्टा है इसलिए विग्रह हम यहाँ पर हैं विग्रह के समान
दैट शुड बी देयर मेडिटेशन दैट दे आर इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक द होल नेम ऑफ कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट द डीटीज आर इंडिपेंडेंट बट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम
तो हमारा जो ध्यान है इसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से भगवान का दिव्य नाम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है उसी प्रकार से जो भगवान का अर्च विग्रह है ये भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और हम अर्च विग्रह पर आश्रित हैं
बट द मर्सीफुल मैनिफेस्ट इन देयर फॉर्म्स ऑफ कृष्ण बलराम शिशि राधे करामन हियर सो वी कुड एंगेज आवर माइंड एंड सेंसेस एंड हैंड्स एंड लेग्स एंड हेड एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आवर कंप्लीट होल इन देयर सर्विस
परंतु शिशि कृष्ण बलराम और राधिका रमन कृपा पूर्वक यहाँ पर उपस्थित हैं इसलिए हम अपने प्रत्येक इंद्रिय से उनकी यहाँ पर सेवा कर सकते हैं
We hear that the holy name of Krishna is non different from Krishna himself.
हम सुनते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है
But when we serve this, the deities, the deity form, we can realize exactly how the Lord is not different from His holy name.
परंतु जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो हम इस बात का साक्षात्कार कर सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है
So the deities, Krishna in His form, the whole name in His form of the deities becomes the whole name of Krishna in His form of the deities.
भगवान कृष्ण का दिव्य नाम इन अर्च विग्रहों के रूप में
becomes the point of our endeavors and efforts. We can actually make efforts to please Him.
और वो हमारे प्रयास का केंद्र बन जाता है।
In the same way, Krishna's instructions in the Vedas.
उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो निर्देश हैं वैदिक शास्त्रों में।
Krishna has two forms.
कृष्ण के दो रूप हैं।
In the ninth canto of Bhagavatam described that Krishna has ubhayatanu, two forms. One of them is Parabrahma, another one is Shabda Brahma. Two forms.
नौवे स्कंद में इसका वर्णन आता है कृष्ण के दो फॉर्म्स हैं एक है परम ब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म
एंड बोथ फॉर्म्स आर इम्परसेप्टेबल इम्परसेप्टेबल
दोनों ही जो रूप है वो अचिंत्य है
जस्ट लाइक वी कैनॉट सी कृष्ण एंड वी हैव टू सी कृष्ण इन हिज फॉर्म ऑफ द डीटी
जैसे कि हम कृष्ण को देख नहीं सकते उनको सिर्फ इन अर्च विग्रहों के रूप में देखते हैं
इन द सेम वे वी डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू कृष्ण हिज फॉर्म ऑफ द शब्द शब्द ब्रह्म
उसी प्रकार से हमारा जो भगवान कृष्ण शब्द के रूप में प्रस्तुत है हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है
द वेदस
वेदस
दैट्स व्हाई वी हैव अ परसेप्टेबल टेंजिबल फॉर्म ऑफ द वेदस कृष्णस इंस्ट्रक्शंस फॉर अस
इसलिए एक ऐसे रूप में वो हमारे समक्ष प्रस्तुत है जिसको हम समझ सके निर्देशों के रूप में
एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट फॉर्म
उस रूप का क्या नाम है
क्या नाम नो या द फॉर्म ऑफ द वेदस इन आवर लाइफ द टेंजिबल फॉर्म ऑफ वेदस इन आवर लाइफ
वेदों का ऐसा रूप जो हमारे जीवन में प्रस्तुत है जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है
इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण इन आवर लाइफ Yeah, the spiritual master.
Adhyatmik guru.
The spiritual master. And he has to be physically present.
और उनको व्यक्तिगत रूप से physically present होना पड़ेगा.
So we could have the presence of the spiritual master, and the spiritual master can tell us exactly what to do, and we will not make any mistake about what he wants us to do.
तो जब अध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में प्रस्तुत है वो बताते हैं कि आपको क्या करना है तब आप कोई गलती नहीं कर सकते.
That's why Jiva Goswami, when he describes Jiksha Guru in Mantra Guru in Bhakti Sandarbha, he quotes a verse from the 11th canto of Bhagavatam.
इसलिए जो जीव गोस्वामी है वे दीक्षा गुरु और मंत्र गुरु के बारे में बताते हैं 11वें स्कंद में
आचार्य मां विज्ञान यत नम मदियत करहिचि नमार्थ गुदे सोयते सर्व देव मयो गुरु हु he quotes Krishna says आचार्य मां विज्ञान यत you should know you should it's an injunction you should know me to be the supreme person to me to be the person who is spiritual master
भगवान कृष्ण ये निर्देश देते हैं कि आपको जानना चाहिए कि मैं गुरु के रूप में आपके समक्ष हूं
दिस इज माई फॉर्म इन योर लाइफ
मेरा ये मेरा रूप है आपके जीवन में जो उपस्थित है
एंड वट एवर यू कैन नो अबाउट मी यू कैन ओनली नो थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू वैष्णवस
और मेरे बारे में आप जितना भी जान सकते हैं वो सिर्फ आप आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव के माध्यम से ही जान पाएंगे
एंड बिसाइड्स दैट यू हैव नो एक्सेस टू मी
और उनके अलावा वे तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है
That's what you should know.
ये इस बात का हमें ठीक रूप से ज्ञान होना चाहिए
But the result of serving the spiritual master in such a faithful way, the result of serving the spiritual master,
तो आध्यात्मिक गुरु के इस प्रकार से सेवा करने का जो परिणाम है
is that when we serve his instructions,
कि वो उनके जो निर्देश हैं उनकी सेवा करें
then Krishna reveals himself to our to ourselves in proportion to the service rendered to the spiritual master.
तो भगवान कृष्ण उतनी मात्रा में अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं जितनी मात्रा में आप आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों की सेवा करते हैं
This is Srila Prabhupada's explanation in the first canto of Bhagavatam.
ये श्रीला प्रभुपाद पहले स्कंद में बताते हैं
He said the Supreme Personality of God is, agrees to reveal himself to a devotee in proportion to the service rendered to the spiritual master.
कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं इस बात से सहमत होते हैं कि अपने आप को उतनी मात्रा में प्रस्तुत करने के लिए जितनी मात्रा में आप आध्यात्मिक गुरु की सेवा करेंगे
And then Srila Prabhupada continues.
उसके बाद श्रील प्रभुपाद आगे लिखते
He says that one devotee fully surrenders to the spiritual master and serves under his instructions.
अगर कोई भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण मात्रा में शरणागत है और उनकी आज्ञाओं की सेवा कर रहा है
The whole world becomes no different from Krishna.
पूरा का पूरा विश्व भगवान से अभिन्न बन जाता है
For such a devotee.
ऐसे भक्त के लिए
इदं हि विश्वं तपसा श्रुतस्य वा श्रुतस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविचित्तर्था कविभिर्निरूपितो यदुक्तमश्लोकगुणानुवर्णने In the same section of Srimad Bhagavatam explained that this world is Krishna.
उसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो पूरा विश्व है कृष्ण ही है.
But to realize that everything around us is connected to Krishna, is personal manifestation of Krishna, one has to serve Krishna through the medium of the spiritual master.
परंतु इस बात का साक्षात्कार करने के लिए कि हमारे समक्ष जितनी चीजें हैं भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, इसके लिए आपको भगवान की सेवा करनी होगी अध्यात्मिक गुरु के माध्यम से.
And then one will develop this kind of vision which will enable him or her to always remember Krishna no matter what he or she looks at.
तब आपका इस प्रकार से दृष्टि उत्पन्न होगी जिससे आप प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक वस्तु में भगवान कृष्ण को याद रख पाएंगे.
जस्ट लाइक a greedy person greedy,
जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति होता है.
जगत धन मयो लोभा, means a greedy person sees everything in this world as a way of earning money.
जैसे एक लोभी व्यक्ति होता है पूरे के पूरे विश्व को इस प्रकार से देखता है कि कैसे इससे पैसा कमाया जा सके.
कामुका कामिनी मयम, and a lusty person sees this universe as a way of satisfying his lust.
और जैसे एक कामुक व्यक्ति होता है वह पूरे जगत को इस प्रकार से देखता है कि किस प्रकार से उसकी कामुक इच्छाएं पूरी हो सके.
Even if you send a greedy person to the forest,
क्या अगर आप एक कामुक व्यक्ति को एक जंगल में भी भेज दें,
what will he see there?
वहां पर वो क्या देखेगा?
Oh, these trees. If I chop down the tree, I can sell it to the paper mill and for that much money.
Oh, यहाँ पर जो वृक्ष है अगर मैं इसको काट के बेच दूँ वहां से कितना मुझे धन प्राप्त होगा?
Yes, and then if you send a lusty person to the forest, what will he think?
ये लोभी व्यक्ति को अगर आप जंगल में भेज दें और अगर एक कामुक व्यक्ति को जंगल में भेज दें,
it's a very nice place for enjoyment here. He just starts looking for beautiful women around.
तो उसे लगेगा कि वातावरण बहुत ही सुंदर है अपनी अपने खुद को एंजॉय करने के लिए.
And Jiva Goswami explains, iti vat hare shariraha. In the same way, a devotee sees everything, all this universe, as a way of worshiping Krishna.
Jiva Goswami ji इस प्रकार से बताते हैं कि एक भक्त के लिए जिसका इस प्रकार से दृष्टि है वो प्रत्येक जग इस जगत की प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से देखेगा कि भगवान कृष्ण की अर्चना के लिए, उनकी सेवा के लिए.
That's why the Lord, we wanted to get to the blessings of the Lord spoken to by him in the next verses. That's why the Supreme Lord told Garuda, whoever meditates on your form, on this mountain, on the forest, on the rivers, on different living entities, on me in different forms, he becomes free from sin, right?
जैसे कि हमने आज के इन श्लोकों में पढ़ा कि कैसे जो भगवान कह रहे हैं कि जो इन विभिन्न चीजों पर ध्यान लगाते हैं वो मेरे पर ही ध्यान लगा रहे हैं.
It almost sounds as if the Lord doesn't make any distinction between his form and the form of this material world.
इन बातों इनको पढ़ के इनको सुन के ऐसा लगता है कि जो भगवान अपने में और इन सभी चीजों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर रहे.
But he's talking about a particular level of consciousness that Gajendra apparently has already attained.
परंतु वो यहाँ पर गजेंद्र की चेतना की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं. गजेंद्र की चेतना है.
Whenever such a devotee, whatever such a devotee looks at, everything reminds him of Krishna.
ऐसा भक्त जहाँ कहीं भी देखता है उसे भगवान कृष्ण का स्मरण होता है.
Right. And this state of consciousness is attained by the mercy of the spiritual master.
और निश्चित रूप से जो चेतना का ये स्तर आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है.
This is why spiritual masters call his divine grace Srila Prabhupada.
इसलिए आध्यात्मिक गुरु को कहा जाता है his divine grace.
Krishna Kripa Srimurti.
Krishna Kripa Murti.
Krishna Kripa Srimurti.
Krishna Kripa Srimurti.
Which means that Krishna has kripa.
इसका अर्थ है कृष्ण की जो कृपा है.
But that kripa manifests, attains form in the person of the spiritual master.
परंतु जो वो कृपा है वो आध्यात्मिक गुरु में उपस्थित है, उसी में रूपांतरित है.
So in order to develop this kind of consciousness, we have to take advantage of the merciful guidance that the spiritual master and senior Vaishnavas give to us.
तो इस प्रकार की चेतना का विकास करने के लिए जो आध्यात्मिक गुरु की कृपा पूर्वक उनके निर्देश उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और वैष्णवों की.
And then we can expect to get the same portion as Garuda, I mean Gajendra received to return back home, back to the spiritual world.
और तब हम जो गजेंद्र को परिणाम यहाँ पर मिला, जो उनकी चेतना विकास हुआ, तो हम भी इसी प्रकार से आशा कर सकते हैं.
Just yesterday we were describing, discussing with Premanjana Prabhu this point.
कि कल प्रभु जी मेरे साथ ये इस बात की चर्चा कर रहे थे
that besides the philosophy and besides the scriptures we also have in our lives tangible proofs of the efficacy of the path that Srila Prabhupada gave to us
ये जो हमें दर्शन है शास्त्र है इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं
in examples of devotees
ऐसे भक्तों के जीवन के
who have passed the final test
जिन्होंने अंतिम परीक्षा को पास किया है
they went to the spiritual world
और जो आध्यात्मिक जगत में गए
I was telling the mention of Prabhu called Giriraj Swami in his class last year he told us of such an example
इसलिए गिरिराज महाराज अपनी कक्षा में बता रहे थे
he said that Giriraj Swami said that I personally feel reinforced in my faith in Srila Prabhupada when I see his disciples becoming successful in their spiritual pursuits
वो बताते हैं गिरिराज महाराज कि मेरा कृष्ण भावनामृत में जो श्रद्धा है वह और अधिक बढ़ जाती है जब मैं देखता हूँ जो श्रीला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं कैसे उनकी सारी आध्यात्मिक आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं
He told us one devotee, Ramadas.
तो उन्होंने कहा एक भक्त रामदास
He was a disciple of Srila Prabhupada.
वो श्रीला प्रभुपाद के शिष्य थे
He was a pujari in America.
वो अमेरिका में पुजारी थे
I think in Detroit temple, if I may, if I'm not mistaken. Anyhow, he developed an incurable disease and he went to Vrindavan.
उनको एक ऐसा डिजीज हो गया जिसका उपचार उपलब्ध नहीं था इसलिए वो शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन में आए
During his lifetime, he was a very caring, very loving person. He would always make sure the devotees working under his guidance were happy and satisfied in all respects.
वो बहुत ही भक्तों को प्रेम करने वाले भक्त और उनका हमेशा ही प्रयास रहता था जो उनकी गाइडेंस के अंदर भक्त हैं वो कृष्ण भावनामृत में खुश हों
So he went to Vrindavan and he passed away in Vrindavan happily.
तो जीवन के अंत में वृंदावन गए और बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने शरीर छोड़ा
But after he passed away,
परंतु शरीर छोड़ने के बाद
he started appearing to devotees in their dreams.
वो कई भक्तों के स्वप्न में आने लगे
And he started telling them in their dreams.
और उनको स्वप्न में ही बताने लगे
You cannot even imagine what is here.
कि आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या है।
Cannot even imagine how wonderful it is to serve Krishna here.
आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण की यहाँ पर सेवा करना कितना अद्भुत है।
You cannot even start to imagine.
आप कल्पना करने की शुरुआत भी नहीं कर सकते।
And I cannot describe.
और मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता।
But I can tell you one thing.
परंतु मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ।
Whatever difficulties you have to go through in your life, it's worth it.
आपको जितने भी तपस्या या मुश्किलें अपने इस जीवन में से गुजर इससे उनसे गुजरना पड़ रहा है वो इसके लिए वर्थ है लायक है
डोंट हैव एनी डाउट्स
किसी भी प्रकार का संशय मत रखो
जस्ट कंटिन्यू
बस आप आगे बढ़ते जाओ
शिवपाल स्पोक द ट्रूथ एंड यू आर गोइंग टू सी इट फॉर योरसेल्फ
शिला प्रभुपाद जी ने सत्य का व्याख्यान किया है और आप खुद इस बात का अनुभव करोगे
This is what the Lord promises to Gajendra here as well.
और यही यहाँ पर भगवान गजेंद्र को कह रहे हैं
Text 25, we'll conclude on this.
श्लोक संख्या 25.
My dear devotee, unto those who rise from bed at the end of night and offer me the prayers offered by you, I give an eternal residence in the spiritual world at the end of their lives.
हे प्रिय भक्त जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ
This whole life of ours can be compared to a night. Our life?
हमारा जो पूरा जीवन है इसकी तुलना रात्रि से की जा सकती
है It's like night. It's dark in a material world.
ये भौतिक जगत में रात्रि ही है
But if you practice every day, finish in the night, getting up and chanting Krishna's names, returning to his abode every single morning,
अगर आप प्रत्येक सुबह इस बात का अभ्यास करते हैं भगवान कृष्ण के नामों के जप करने का रात्रि का समापन करने का
That's what Krishna will do for us. He'll finish the night of this life and take us back to the spiritual world.
तो भगवान कृष्ण हमारे इसका जो जीवन का पूरी रात्रि है इसको समाप्त करेंगे और अपने निवास में ले जाएंगे
And the 11th and the 12th canto of Srimad Bhagavatam concluding his instructions to Parikshit Maharaj.
श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंध में जब परीक्षित महाराज के निर्देश का अंत करते हुए
शुकदेव गोस्वामी says
शुकदेव गोस्वामी कहते हैं
if you just try to remember krishna at the point of your death just try
अगर आप भगवान कृष्ण को स्मरण करने का प्रयास रखें जीवन के अंत में
in exchange for those efforts In exchange for this effort,
इस प्रयास के बदले में
कृष्ण will restore you to your original situation.
भगवान कृष्ण आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसमें आपको दोबारा वहां पहुंचा देंगे.
And he'll make up for whatever you lack in your life.
और आपने आपके जीवन में जितनी कमियां रह गई हैं भगवान कृष्ण उसको पूरा कर देंगे.
But in order to be able to remember Krishna at the end of our lives,
परंतु भगवान कृष्ण को जीवन के अंत में स्मरण करने के लिए
we have to practice.
हमें इसका अभ्यास करना होगा.
Every day.
प्रतिदिन.
Not every day, every morning.
प्रतिदिन नहीं. प्रतिदिन सुबह.
Not every morning, at the end of night, every night.
At the end of रात्रि के अंत में.
Right.
सुबह भी नहीं, रात्रि के अंत में ब्रह्म मुहूर्त.
Thank you very much for your attention.
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए.
I don't think we have time for questions.
हमारे पास प्रश्न के लिए समय नहीं है.
श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय.
इसका स्मरण मोहन प्रभु जी की जय.